एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड ग्रेन की एक बहुत ही जबरदस्त किताब द वेजर अ टेल ऑफ शिपरिक म्यूटिनी एंड मर्डर के बारे में।
हाँ, और ये सिर्फ मतलब किसी पुराने जहाज के टूटने की कहानी भर नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई सच होता क्या है
और कौन तय करता है कि सच क्या है, खासकर तब जब हालात एकदम कह सकते हैं जिंदगी और मौत वाले हों।
हाँ, और इतिहास उसे लिखता कौन है, ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है ना?
बिल्कुल, आज भी हम देखते हैं किसी भी घटना के कितने अलग अलग नैरेटिव्स, कितनी कहानियां सामने आती हैं।
तो द वेजर एक तरह से हमें दिखाती है कि ये जो कहानी पर कब्जा करने की लड़ाई है, ये शायद हमेशा से चलती आई है।
सही कहा, और इस कहानी को हम तक पहुंचाया है डेविड ग्रेन ने।
डेविड ग्रेन,
हाँ,
जाने माने अमेरिकी पत्रकार है, नॉन फिक्शन लिखते हैं।
हाँ, द न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हैं, और उनकी खासियत है कि वो ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को खोद निकालते हैं जो कहीं दब गई हों, भुला दी गई हों।
और उनकी रिसर्च कमाल की होती है, मतलब वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पुरानी डायरियों, जहाज के लॉग्स, कोर्ट के दस्तावेजों, इन सब में पूरी तरह डूब जाते हैं।
हमने उनकी दूसरी किताबों जैसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड या किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में भी ये देखा है, वो सूखे तथ्यों को कैसे एक रोमांचक कहानी बना देते हैं।
इसीलिए द वेजर के लिए वो एकदम सही लेखक थे, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है जिसमें इतिहास के अलग अलग दावे हैं, सच के कई पहलू हैं, इंसानी फितरत की परतें हैं।
वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों हुआ, उसके पीछे का मनोविज्ञान, राजनीति, सब कुछ।
तो कहानी है 1740 के दशक की। ब्रिटेन और स्पेन के बीच एक लड़ाई चल रही थी, वॉर ऑफ जेनकिंजियर।
नाम तो अजीब है, पर असल में ये बड़ी शक्तियों की अपनी धाक जमाने की लड़ाई थी।
हाँ, तो ब्रिटिश नौसेना का एक जहाज था HMS वेजर। ये एडमिरल एंसन के बेड़े का हिस्सा था जो एक गुप्त मिशन पर निकला था।
मिशन क्या था? दुनिया का चक्कर लगाना और स्पेन के खजाने वाले जहाजों को लूटना।
बिल्कुल, लेकिन ये जो वेजर जहाज था ना, वो कोई बहुत बढ़िया जंगी जहाज नहीं था।
अच्छा?
हाँ, वो असल में एक पुराना माल ढोने वाला जहाज था जिसे बस जैसे तैसे तैयार करके इस खतरनाक सफर पर भेज दिया गया था, और सामान और लोग जरूरत से ज्यादा भरे हुए थे।
और रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक, केप हॉर्न।
तो अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा।
हाँ, तूफान, बीमारी,
दोनों। भयानक तूफान आए और स्कर्वी, वो जानलेवा बीमारी, उसने कहर बरपा दिया।
ओह।
और आखिरकार जहाज पहुंचा दक्षिण अमेरिका, पेटागोनिया के तट पर, और वहां एक वीरान अनजान द्वीप से टकराकर टूट गया।
कितने लोग बचे?
करीब 140 लोग किसी तरह उस द्वीप पर पहुंच पाए।
और फिर?
और यहीं से मतलब असली कहानी शुरू होती है। उस द्वीप पर जिसे उन्होंने बाद में वेजर आइलैंड नाम दिया, सारे नियम कायदे टूटने लगे,
सभ्यता का वो मुलम्मा उतरने लगा।
हाँ, कह सकते हैं। भूख थी, जबरदस्त ठंड थी, बीमारी थी, और कोई उम्मीद नहीं थी।
नेवी का वो सख्त अनुशासन,
वो बिखरने लगा। अफसर और नाविक का फर्क मिट गया, सब बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे।
फिर तो गुटबाजी हुई होगी।
हाँ बिल्कुल, जल्द ही बचे हुए लोग दो गुटों में बट गए। एक तरफ थे कैप्टन डेविड चीप,
वो अपने पद और नियमों पर अड़े हुए थे।
बिल्कुल, उनकी जिद थी कि जहाज की जो छोटी नाव बची है उसे ठीक करके उत्तर की ओर जाएं, मिशन जारी रखें, चाहे ये कितना भी नामुमकिन लगे।
और दूसरा गुट?
वो बना गनर जॉन बल्कली के नेतृत्व में। बल्कली एक अनुभवी नाविक थे, बढ़ई का काम भी जानते थे।
अच्छा, प्रैक्टिकल आदमी।
हाँ, उन्हें और उनके ज्यादातर साथियों को कैप्टन की योजना पागलपन लग रही थी, और कैप्टन का रवैया तानाशाही जैसा।
तो बल्कली ने क्या कहा?
बल्कली ने एक ज्यादा व्यवहारिक योजना रखी कि जहाज की जो बड़ी नाव है उसे ठीक करें, उसे और लंबा करें, और फिर दक्षिण के रास्ते मैगलन स्ट्रेट से होते हुए ब्राजील पहुंचे और वहां से इंग्लैंड।
तो ये सिर्फ दो प्लान की लड़ाई नहीं थी?
नहीं, ये लीडरशिप के दो मॉडलों की टक्कर थी। एक तरफ पद से मिला अधिकार, दूसरी तरफ काबिलियत और लोगों की सहमति से मिला नेतृत्व।
और टकराव बढ़ गया होगा।
बहुत बढ़ गया। एक मोड़ तब आया जब कैप्टन चीप ने गुस्से और शक में आकर एक युवा अफसर हेनरी कजिन्स को गोली मार दी।
ओहो, गोली मार दी।
हाँ, और इस घटना के बाद तो ज्यादातर लोगों का कैप्टन पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। वो उन्हें लीडर नहीं बल्कि हत्यारा मानने लगे।
फिर तो विद्रोह तय था।
हाँ, बकली और उनके साथियों ने साफ कह दिया कि वो कैप्टन का हुक्म नहीं मानेंगे। उन्होंने उस बड़ी नाव पर कब्जा कर लिया जिसे उन्होंने स्पीडवेल नाम दिया।
और कैप्टन चीप और उनके वफादारों को
उन्हें उसी द्वीप पर छोड़ दिया और खुद निकल पड़े अपनी उस नामुमकिन सी लगने वाली यात्रा पर।
तो अब कहानी दो अलग अलग यात्राओं की है।
हाँ, दो भयानक जानलेवा यात्राएं। एक तरफ बल्कली और उनके करीब 80 साथी, स्पीडवेल नाम की उस खुली नाव में ठूंसे हुए, हजारों मील का सफर
मैगेलन स्ट्रेट से होते हुए। वो तो बहुत खतरनाक माना जाता है।
बेहद खतरनाक, बर्फीले तूफान, भुखमरी, आपस के झगड़े, सब कुछ झेला उन्होंने।
बल्कली का नेतृत्व कैसा रहा इस दौरान?
उनका नेतृत्व काबिलियत पे टिका था, लेकिन उन्हें भी मुश्किल फैसले लेने पड़े, जैसे कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा ताकि बाकी बच सकें।
और अंत में?
अंत में कुछ लोग, जिनमें बल्कली भी शामिल थे, किसी तरह ब्राजील पहुंचे और फिर वहां से इंग्लैंड। ये अपने आप में एक चमत्कार था।
और कैप्टन चीप और उनके साथियों का क्या हुआ?
उनकी कहानी और भी भयानक है। उत्तर जाने की कोशिश तो तुरंत फेल हो गई।
तो वापस द्वीप पर?
हाँ, वापस वेजर द्वीप लौटे और वहां भुखमरी इतनी बड़ी कि नरभक्षण तक की नौबत आ गई।
ओह, ये तो कल्पना से भी परे है।
हाँ, आखिरकार कुछ स्थानीय आदिवासी मिले, उनकी मदद से वो आगे बढ़े, फिर स्पेनिश लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, सालों की कैद गाठी,
और फिर इंग्लैंड वापस पहुंचे।
हाँ, सालों बाद चीप और दो और लोग, जिनमें जॉन बायरन भी थे, जिनकी डायरी बहुत अहम साबित हुई, वो इंग्लैंड वापस पहुंचे
और फिर शुरू हुआ असली ड्रामा लंदन में।
बिल्कुल, बल्कली का ग्रुप पहले पहुंचा था, उन्हें तो हीरो की तरह देखा जा रहा था, उन्होंने अपनी कहानी भी छपवा दी थी जिसमें कैप्टन चीप को विलन बताया गया था।
लेकिन तभी चीप और बायरन आ गए।
हाँ, और उन्होंने सुनाई एक बिल्कुल अलग कहानी, एक वफादार कैप्टन की कहानी जिसे उसके विद्रोही साथियों ने धोखा दिया।
अब एडमिरल्टी यानी नेवी के बड़े अफसरों के लिए तो मुश्किल खड़ी हो गई।
बहुत बड़ी मुश्किल, कोर्ट मार्शल बैठाना पड़ा, दांव पर जाने भी थी, अगर बल्कली दोषी पाए जाते तो विद्रोह की सजा फांसी थी, और अगर चीप पर सवाल उठता तो नेवी के अनुशासन की नींव हिल जाती।
और इसमें एडमिरल एनसन का भी रोल था, वो जो मिशन के लीडर थे।
हाँ, एनसन तब तक अपनी यात्रा पूरी करके एक नेशनल हीरो बन चुके थे और एडमिरल्टी में उनका काफी दबदबा था, उन्होंने इस मामले में दखल दिया।
किस तरह का दखल?
ग्रांड दिखाते हैं कि कैसे पूरी कोशिश ये की गई कि सच की तह तक जाने के बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे नेवी की इज्जत बच जाए।
मतलब सच्चाई को किनारे कर दिया गया।
हाँ, कोर्ट मार्शल ने जानबूझकर विद्रोह और हत्या जैसे बड़े सवालों को नजरअंदाज किया, सारा ध्यान जहाज के नुकसान जैसे तकनीकी मुद्दों पर लगाया गया।
और नतीजा?
नतीजा ये कि लगभग सभी को बरी कर दिया गया। एक ऐसी कहानी बनाई गई जो नेवी के अनुशासन और साम्राज्य की शान को बनाए रखे, और जो असली कड़वी उलझी हुई सच्चाई थी
वो फाइलम में दफन हो गई।
बिल्कुल।
तो इस पूरी कहानी से कई गहरे सवाल उठते हैं। पहला तो यही जो हम शुरू में कह रहे थे, सच क्या है।
हाँ, ये कहानी दिखाती है कि सच कितना व्यक्तिपरक हो सकता है, सब्जेक्टिव। अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग कैसी कैसी कहानियां गढ़ सकते हैं।
और जिसकी कहानी ज्यादा दमदार हो या सत्ता को ज्यादा सूट करे, वही सच मान लिया जाता है।
आज भी तो यही होता है, मीडिया में, राजनीति में, हर जगह नैरेटिव की लड़ाई चलती रहती है।
दूसरा सबक, वो सभ्यता वाली बात।
हाँ, कि हमारी ये जो सभ्यता है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये कितनी नाजुक है। उस द्वीप पर सब बराबर हो गए थे, अफसर, नाविक, सब इंसान थे, भूखे और डरे हुए।
ये थोड़ा डराने वाला भी है सोचना कि जब सब कुछ बिखर जाता है तो इंसान कैसा हो जाता है।
बिल्कुल। फिर है नेतृत्व का सवाल, लीडरशिप।
कैप्टन चीप का वो पारंपरिक पद पर आधारित नेतृत्व, वो संकट में फेल हो गया।
हाँ, वो बहुत अड़ियल थे, जबकि बल्कले, उनका नेतृत्व जरूरत से पैदा हुआ था, वो प्रैक्टिकल थे, लोगों को साथ लेके चले।
तो मुश्किल वक्त में सिर्फ पदवी काम नहीं आती, लचीलापन, व्यावहारिकता, लोगों का भरोसा, ये ज्यादा जरूरी है।
सही बात है, ये किसी भी टीम, किसी भी संगठन के लिए सच है।
और ये भी तो है कि इस पूरी त्रासदी की वजह क्या थी।
साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ब्रिटेन की दौलत और ताकत बढ़ाने की भूख,
और कीमत चुकाई आम नाविकों ने, उनकी जानें गईं।
हाँ, बड़े लक्ष्यों के सामने अक्सर इंसानी जिंदगी की कीमत कम हो जाती है।
लेकिन इस अंधेरे के बीच भी कुछ उजाला है।
हाँ बिल्कुल, इंसानी सहन शक्ति की भी ये कहानी है, उन लोगों ने जो हालात झेले वो अकल्पनीय है। बल्कली और उनके साथियों का वो सफर, वो तो समुद्री इतिहास का एक अद्भुत कारनामा है।
और जीने की इच्छा।
हाँ, जीने की जबरदस्त इच्छा, और साथ ही इंसान की क्रूरता भी दिखती है इसमें, दोनों पहलू हैं।
और आखिर में वो कोर्ट मार्शल, कानून बनाम न्याय।
बिल्कुल, फैसला शायद कानूनी तौर पर ठीक हो, पर क्या वो नैतिक था? क्या कजिन्स को न्याय मिला? नहीं। संस्था को बचाया गया, न्याय को नहीं।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। जैसे एक जगह कहा गया है कि उस द्वीप पर अधिकारी और नाविक नहीं थे, बस भूखे आदमी थे। समाज का ताना बाना एक पल में बिखर गया था।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है। दिखाता है कि हमारे सामाजिक ढांचे कितने नाजुक हो सकते हैं।
और एक और बात कि जिंदा रहने की लड़ाई खत्म होने के बाद असली लड़ाई सच्चाई पर कब्जा करने की शुरू हुई।
हथियार तलवारें नहीं बल्कि कलम और कागज बन गए थे।
हाँ, जिसकी कहानी जीत गई वही हीरो बन गया।
और कोर्ट मार्शल के बारे में भी कहा गया है कि एडमिरल्टी ने पूरी सच्चाई नहीं खोजी बल्कि एक काम चलाने लायक अतीत ढूंढा।
घटनाओं का एक ऐसा संस्करण जो नेवी के अनुशासन को मजबूती करे और साम्राज्य की शान बनाए रखे।
सत्ता हमेशा अपने हिसाब से इतिहास घड़ती है।
शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास उन लोगों का होता है जो उसे बताने के लिए जिंदा रहते हैं।
हाँ, जो मर जाते हैं या जिनकी आवाज दबा दी जाती है उनकी कहानी अक्सर खो जाती है।
ये कहानी भले ही 250 साल पुरानी है पर आज के लिए भी इसमें बहुत कुछ है।
बिल्कुल, जैसे लीडरशिप की बात, संकट के समय कैसा नेतृत्व चाहिए, नियमों से बंधा हुआ या लचीला।
ये सवाल तो हर मैनेजर हर लीडर के सामने आता है।
और जिस तरह उस द्वीप पर गलतफहमी, गुटबाजी और कम्युनिकेशन गैप ने हालात बिगाड़े,
वो हमें सिखाता है कि किसी भी टीम में समाज में खुलकर बात करने का माहौल, मतलब वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी कितनी जरूरी है,
ताकि लोग अपनी असहमति बता सकें और वो बिखराव का कारण न बने।
और नैरेटिव की ताकत, कहानी कहने की ताकत,
आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा दिखती है। कौन सी कहानी पहले आती है, कैसे कही जाती है, इसी से ओपिनियन बनता है।
तो हमें हमेशा सोचना चाहिए किसकी कहानी है, क्यों सुनाई जा रही है और किसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
बिल्कुल, और वो नैतिक दुविधाएं, उन लोगों को कितने भयानक फैसले लेने पड़े।
हाँ, ये याद दिलाता है कि नैतिकता हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मुश्किल हालात में लोग क्यों कुछ करते हैं ये समझने के लिए सहानुभूति चाहिए।
तो कुल मिलाकर द वेजर सिर्फ एक समुद्री एडवेंचर नहीं है।
नहीं, ये इतिहास पर, सच पर, सत्ता पर और इंसान के स्वभाव पर एक बहुत गहरी सोच है।
ये याद दिलाती है कि जिसे हम इतिहास मानते हैं वो अक्सर एक घड़ी हुई कहानी होती है और असली कहानी ज्यादा जटिल, ज्यादा उलझी हुई होती है।
ये दिखाती है कि इंसान में गजब की सहन शक्ति भी है और भयानक क्रूरता भी।
और वो सभ्यता का पर्दा, वो बहुत पतला है, कभी भी हट सकता है।
डेविड ग्रेन ने वाकई कमाल का काम किया है। एक भूली हुई कहानी को जिंदा करके हमें इतिहास और खुद को समझने का एक नया नजरिया दिया है।
हाँ, और ये सिखाया है कि सच जानने के लिए हमें हमेशा आधिकारिक कहानी से आगे देखना होगा, उन आवाजों को सुनना होगा जो दबा दी गई हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।